मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 9 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की बस कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाली 15 दिन की क्लासेस में एडमिशन लिए हैं। इन चार दोस्तों के नाम हैं संजीव कुमार, आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, अनूप सर्राफ, आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, प्रमोद कुमार गोडेश्वर, आप बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं, और कृष्ण सिंह, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो संजीव, अनूप, प्रमोद और कृष्णा, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सोमवार है, अगला भी सोमवार होगा जो 7 दिन के बाद आएगा। इसके बाद जो सोमवार होगा वो बिल्कुल डिफरेंट सोमवार होगा, खासकर उनके लिए जो लंबे समय से क्लासेस के शुरुआत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सच बात यह है मित्रों कि मेरे लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण और डिफरेंट डे होगा, और साथ ही मेरी पूरी टीम के लिए भी। मित्रों, आज मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा उनसे जो क्लास में आने के लिए अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। अगले सप्ताह से मैं आपको प्रक्रिया बतानी शुरू करूंगा कि आपको कैसे करनी है, क्योंकि जो आप यात्रा करेंगे, अपनी तैयारी की जो शुरुआत करेंगे, मान करके चलिए कि आपकी पढ़ाई वहां से शुरू हो चुकी है। लेकिन आज मैं जो स्पेशली आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूं, मित्रों, कई स्टूडेंट्स जो हमारे पुराने रहे हैं वो मेल भी लिख करके मुझे कह रहे हैं कि उनका ये संदेश आप सब तक मैं पहुंचाऊं, तो चूंकि उनके नाम कई हैं मित्रों, तो मैं उनके संदेश को इकट्ठा करके आज आप तक पहुंचा रहा हूं। पहली बात तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जो आने वाले आप सब हैं उनके प्रति इतना जुड़ाव लगाव महसूस कर रहे हैं कि आपके सीनियर्स के रूप में, यूं कह लीजिए कि आपके बड़े भाई बहन के रूप में, वो आपको सजेशन दे रहे हैं। ज्यादातर जो स्टूडेंट ने मेल लिखे हैं मित्र, उनका सजेशन ये है कि सर उनसे कहें कि वो खुद को खाली करके आए। कुछ ने तो ये तक लिखा है कि सर आप भी हम लोगों से ये बात कहा करते थे कि खुद को खाली करके आओ, लेकिन उस समय हमारी समझ में ये बात नहीं आती थी और आ भी जाती थी तो लगता था कि ये फालतू की बात है, क्या खुद को खाली करके जाना। लेकिन क्लासेस अटेंड करने के दौरान और खासकर अटेंड कर लेने के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि सच में खुद को खाली करना क्या होता है, और यदि हम खुद को खाली करके गए होते तो हम कितना लेकर आए होते। देखिए, सीधी सी बात है कि आपके पास एक थैला है, उस थैले की अपनी कैपेसिटी है, उसमें कुछ चीजें ऑलरेडी भरी हुई है, रखी हुई है। अब जो चीजें रखी हुई हैं उसी में अब आप कुछ और चीजें डालेंगे तो उतनी जगह तो उसमें ऑलरेडी भर चुकी है, उतना सामान कम आएगा क्योंकि आप नया सामान डाल रहे हैं। लेकिन यदि आपने उस पुराने सामान को हटा दिया है तो आपके थैले की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, उसका आयतन बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और उसमें आप नई चीज जो लेने जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा समा पाएंगे। तो मित्रों, उन सबका ये जो मैसेज है मैं आप सबको देना चाहूंगा कि प्लीज अपने आप को खाली करके आइए। खाली करके आने का मतलब है अपने दिमाग से आशंकाओं को निकाल दीजिए, अपने दिमाग से भय को निकाल दीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने दिमाग से ईगो को निकाल दीजिए कि मुझे तो बहुत आता है। चाहे आप 2-4 साल से ही आईएएस की तैयारी क्यों न कर रहे हो, और चाहे आप मेन्स तक पहुंच ही क्यों न चुके हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मान करके चलिए कि मैं बिल्कुल कोरे स्लेट की तरह हूं, और जब स्लेट कोरा होता है तो अगर छोटा सा भी बिंदु उसमें टांक दिया जाए, आंक दिया जाए, तो वो चमचमाता है, टिमटिमाता है, बहुत तेजी के साथ उभरता है। तो मित्रों, आप सब अपनी मनोवैज्ञानिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दीजिए, अपने को खाली कीजिए। तो मित्रों, ये हमारे पूर्व के विद्यार्थियों का दिया गया आप सबके लिए संदेश है। आइए अब मैं शुरुआत करता हूं न्यूज से, और आज मुख्य विषय के रूप में मित्रों हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा राहत पैकेज के बारे में। सरकार ने जैसा कि कहा है अर्थव्यवस्था के संकट को देखते हुए कि वो राहत पैकेज प्रोवाइड करेगी, इस पर हम लोग कुछ बातें करेंगे, खासकर राहत पैकेज के माध्यम से यूं कह लीजिए कि कुछ अर्थव्यवस्था पर बातें करेंगे। आइए कुछ न्यूज की बातें कर लेते हैं मित्रों, और न्यूज में आज के न्यूज मतलब आज का मतलब जो कल का न्यूज रहा है उसमें कुछ खास बातें दिखी नहीं, आपने भी न्यूज सुनी ही है। एक ही बात थी जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि भई एक साथ चुनाव तो कराए जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं कि लंबे समय से लगभग एक डेढ़ साल से बहस चल रही है कि अब लोकसभा और जो विधानसभा इनके चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, ये लगातार चुनाव होते रहते तो इससे देश का बहुत नुकसान होता है। और आपको अगर पुराने विद्यार्थी आप मेरे रहे हैं लिसनर तो आपको याद होगा कि इस पर हम लोगों ने बहुत सी बातें भी की हैं, और खासकर करंट कंटेंट में तो मैंने बहुत लोगों के लेख भी इसके ऊपर प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो अक्टूबर में एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये प्रश्न आने की संभावना काफी है, इस प्रश्न के आने की। तो मित्रों अभी तो जो चुनाव आयोग ने दो तीन बातें जो कही हैं वो बस आपको मैं याद दिला देता हूं। पहला तो यह कि इसके लिए संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून में परिवर्तन करने पड़ेंगे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए सभी दलों की सहमति ली जानी चाहिए, लेकिन जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो वो कराने में सक्षम है, मतलब वो करा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि जब हम लोग स्टूडेंट थे, मतलब समझिए कि मिडिल स्कूल वगैरह में पढ़ते थे, उसी समय की स्मृतियां हैं दिमाग में, उस समय ऐसे ही होता था, ज्यादातर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे। अब शुरुआत हुई थी तो सत्ता उतना डिफरेंस नहीं था कि किसी के चुनाव कब हो रहे हैं किसी के चुनाव कब हो रहे हैं, कभी कहीं कोई पार्टी है कहीं कोई पार्टी है, तो अक्सर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ हुआ करते थे। तो जब उस समय करा लिए गए तो अभी चुनाव आयोग के लिए कराना मुश्किल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी ने हर इंस्टीट्यूशन की संस्था को बहुत की ताकत को बहुत बढ़ा दिया है। तो दोस्तों अब मैं थोड़ी सी पुरानी खबरों पर आता हूं, दो तीन पुरानी खबरें हैं उन जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस की दृष्टि से, पहले उनकी चर्चा कर लूं फिर देखता हूं कि मेरे पास कितना वक्त बचेगा मुख्य विषय के लिए। मित्रों एक तूफान का नाम फिर से अखबारों में आया है और उसका नाम है नेटे। ये भी जो मिडिल अमेरिका है वहां आने वाला तूफान है, कोस्टारिका होंडुरास और निकारागुआ में ये नुकसान कर रहा है। और इससे पहले देखिए अटलांटिक महासागर का यह भी तूफान है, अटलांटिक, दो चीजें याद रखिए कि यह अटलांटिक महासागर का तूफान है और उष्णकटिबंधीय तूफान है, ये दो बातें आपको याद रहनी चाहिए। और अगर ये दो बातें मैं बता रहा हूं तो फिर अब याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या अटलांटिक महासागर में और भी कुछ उष्णकटिबंधीय तूफान इसी के आसपास आए हैं। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इस तरीके से चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको शायद याद आ जाए कि हां दो तूफान और आए थे जिनके बारे में मैंने चर्चा भी की थी, एक तो था हार्वे और एक था इरमा, ये दोनों तूफान भी अटलांटिक महासागर के हैं और बकायदे उष्णकटिबंधीय तूफान है। तो तीन तूफान आपके पास हो गए हैं राइट आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। मित्रों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो है शांति का नोबेल पुरस्कार, उसकी घोषणा हो चुकी है। आप जानते हैं वो एक संस्था को दिया गया है जिसका नाम है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, एक संस्था है जो इस काम के लिए इस बात के लिए काम कर रही है कि किस तरीके से दुनिया से परमाणु हथियारों को रुखसत किया जा सके, खत्म किया जा सके। इंटरनेशनल कैंपेन यानी कि अभियान चलाया है उसने टू एबॉलिश, खत्म करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स परमाणु हथियार। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं मित्रों, ये यूएनओ की एजेंसी नहीं है, सिविल सर्विस में आपको इसी तरह से फंसाने की कोशिश की जाती है ना, ये न तो यूएनओ की एजेंसी है न परमाणु संस्थान की एजेंसी है न ये वर्ल्ड बैंक की है, किसी की एजेंसी नहीं है, ये मूलतः गैर सरकारी संगठन है, कह लीजिए एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। 100 से अधिक देशों में ये काम कर रही है, इसकी पूरी दुनिया में लगभग 470 शाखाएं हैं, इसकी सहयोगी संस्थाएं हैं कह लीजिए। 2007 में वियना में इसकी शुरुआत हुई थी, 2007 वियना में, बस इतना ही अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होगा। प्री में ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक बात आपको खासकर ध्यान रखनी है फ्रेंड्स इसके बारे में कि ये जो संगठन है ये गैर सरकारी है, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, गैर सरकारी संगठन है। और फिर आप देख रहे हैं कि अभी उत्तरी कोरिया किस तरीके से परमाणु हथियारों पर की धमकियां दे रहा है और पूरी की पूरी दुनिया में एक तनाव सा पैदा हो गया है। तो इसे देखते हुए डेफिनेटली ICAN, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ICAN, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, उसको ये पुरस्कार दिया जाना बहुत ही प्रासंगिक भी है, बहुत सामयिक भी है। दोस्तों अब मैं एक खबर की और चर्चा करना चाहूंगा जो मूलतः फ्राइडे सैटरडे की है और इससे रिलेटेड एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक जो एडिटोरियल कमेंट है मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं। उस समय खबर मैंने ये पढ़ी थी और वो खबर यह है कि फ्रेंड्स की जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा है ना कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम की व्यवस्था है, एक ग्रुप है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। तो वो नाम सब देखते हैं और देखने के बाद ये फिर निर्णय करते हैं कि किसे अपॉइंटमेंट किया जाए, किसे प्रमोट किया जाए, इन सब के बारे में फैसला देते हैं जिसे कि कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। अब एक जो नई बात हुई है वो ये हुए कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जो भी डिसीजन लेगी कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, तो उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को, क्या डिस्कशन हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों किसी का प्रमोशन किया गया, क्यों किसी के प्रमोशन को हेल्ड अप कर दिया गया, ये वेबसाइट पर डाल देगी, मतलब पब्लिक डोमेन में डाल देगी और पब्लिक फिर उसे देखे। ये तो ट्रांसपेरेंसी का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। और कोर्ट के द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है, मतलब ये दिखाता है कि किस तरीके से कोई भी संस्था खुद को सुधारने के लिए भी कोशिश कर सकती है। ये सेल्फ रिफॉर्म की प्रोसेस है जो कोर्ट ने उठाया है और इसका बहुत ज्यादा वेलकम किया जा रहा है। अब आप देखिए कि अभी अभी कोर्ट ने ये डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कि 6 कैंडिडेट हैं उनको मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा, 3 को केरल का बनाया जाएगा, ठीक है वहां तक तो ठीक है, लेकिन 4 कैंडिडेट को मद्रास हाई कोर्ट के जज बनाने के नाकाबिल पाया गया, उनके इसकी योग्य नहीं पाया गया। तो सारी चीजें पब्लिक में है, अब पब्लिक देखे कि भाई क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि देखिए जिनकी भी नियुक्ति होती है उनका पूरा रिकॉर्ड इस कमेटी के पास होता है, कमेटी चलिए मैं कह देता हूं, पूरा रिकॉर्ड होता है, पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, एजुकेशनल रिकॉर्ड क्या रहा है, पूरा का रिकॉर्ड रहता है और उनके आधार पर डिसीजन लेती है जो समिति है, कॉलेजियम है। तो बट नेचुरली जब पब्लिक भी उसे देखेगी तो निर्णय लेते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, यही तो ट्रांसपेरेंसी की सबसे बड़ी ताकत है। तो मित्रों ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है कि जब भी ट्रांसपेरेंसी पर अगर मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये उदाहरण डेफिनेटली कोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही यूं कह लीजिए कि क्रांतिकारी कदम है, राइट। मित्रों अब आइए मैं अंतिम जो मुख्य विषय पर आता हूं, जो खबरें थी वो हो चुकी हैं। मुख्य विषय के तहत मैंने कहा कि आज हम थोड़ी सी बात करेंगे पैकेज राहत पर। मित्रों आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर खूब बहस हो रही है, खूब आर्टिकल्स आ रहे हैं और ये माना जा रहा है, लगभग एस्टेब्लिश सा हो गया है कि अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, ये तो कम से कम स्थापित हो गया है। स्लो डाउन हो गया है, व्यापार बहुत कम हो गया है, बिक्रियां कम हो गई हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे और जो मझोले उद्योग थे उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है, तो वो अपने यहां से काम करने वाले लोगों को भी निकाल रहे हैं, तो उनके पास रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, अब उनकी आमदनी नहीं होगी। आप कल्पना करके देखें कि जब लोगों की आमदनी नहीं होगी तो बट नेचुरली कि फिर वो बाजार में खर्च कैसे करेंगे, और जब बाजार में खर्च ही नहीं होगा इसका मतलब है कि सामान नहीं बिक रहा है, जब सामान नहीं बिक रहा है तो जो कंपनियां सामान बना रही हैं, जो कारखाने सामान बना रही हैं, वो बना के क्या करेंगे, तो वो बनाना कम करेंगे, तो वो अपने यहां से फिर लोगों को निकालेंगे, तो एक विचित्र किस्म का जो साइकिल है वो अब दिखाई दे, उसका प्रभाव दिखाई देने लगा है और जबरदस्त रूप से दिखाई देने लगा है, और इसको लेकर के पॉलिटिशियंस भी चिंतित हैं और अर्थशास्त्री भी चिंतित हैं। तो इस चिंता को देखते हुए फिर सरकार ने एक कुछ समय पहले घोषणा की थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सरकार एक राहत पैकेज लेकर के आएगी। राहत पैकेज का मतलब है कि वो खर्च बढ़ाएगी, मतलब यूं कह लीजिए कि मार्केट में पैसा देगी ताकि लोग सामान खरीद सके मोटे तौर पर, राइट। अब आप देखिए मित्रों कि मैं थोड़ा सा आपको अब इसको अर्थशास्त्र की भाषा में कन्वर्ट करके बताने की कोशिश करता हूं। सरकार जो राहत पैकेज देगी उसका मतलब है कि वो वस्तु की मांग को जनरेट करे, मतलब वस्तु की मांग कम हो गई है, तो अब वो उसे पैदा करे। जैसे ही मांग पैदा होगी वैसे ही बाजार उठने लगेगा, एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। और जो क्लास स्टूडेंट जो मेरे रहे हैं वो मांग और पूर्ति पर मैंने बहुत गहराई से आप सबको समझाया था, पूरा का पूरा साइकिल प्लीज उसे याद करने की कोशिश कीजिए। सामान्य तौर पर फ्रेंड्स मार्केट में जो डिमांड जनरेट होती है, जो डिमांड पैदा होती है, उसके चार मुख्य हिस्से होते हैं। देखिए चार मुख्य हिस्से होते हैं, है ना, हम अर्थशास्त्र की शब्दावली में बात कर रहे हैं। पहला तो यह होता है कि चीजों की मांग कितनी हो रही है, यानी कि वस्तु की खपत कितनी हो रही है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सीमेंट हो, कुछ भी हो, मतलब उसकी खपत कितनी हो रही। तो खपत को आप सीधे सीधे कह लीजिए कि मांग कितनी हो रही। खपत का मतलब है कि उसे उपभोक्ता खरीदना चाह रहा है, उसका यूज करेगा, तो वस्तु की खपत। दूसरी जो चीज होती है याद रखिए वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वस्तु की खपत के बारे में तो आप सब ज्यादा जानते होंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मेरे पास पैसा बचेगा, देखिए पैसा होगा तो बचेगा, और जब पैसा बचेगा तो मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा, उसको निवेश करूंगा। जब पैसा निवेश किया जाता है तो याद रखिए फिर वो अर्थव्यवस्था में लगता है। देखिए चाहे मैं पैसा शेयर मार्केट में लगा दूंगा तो वो मेरे माध्यम से कंपनी में पैसा पहुंच जाएगा, चाहे मैं छोटा सा उद्योग खोल लूंगा तो वो चीजों को पैदा करने की कोशिश करेगा, रोजगार के अवसर मैं दूंगा, है ना। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में तो आप अंतर समझते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो उपभोग से के लिए होता है, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो उपभोग के लिए वस्तु के निर्माण करने से होता है। तो जब वस्तु का निर्माण किया जाता है तो मार्केट में एक्टिविटीज पैदा होती हैं, है ना, कच्चे माल की मांग बढ़ेगी, फिर उसको तैयार करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, फिर वो सामान बनेगा, फिर वो सामान बिकेगा, उसे सरकार को टैक्स मिलेगा। तो आप सोचिए कि कितनी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो तीसरा होता है मित्रों, जो बहुत बड़ा होता है, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। सरकारी व्यय बहुत मायने रखता है। अगर सरकार अपने खर्च को कम कर दे तो बाजार में पैसा आना बंद हो जाएगा। सोचिए कितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, कितनी उसकी खरीदी होती है, कितने प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। तीसरा है सरकारी व्यय, और चौथा है मित्रों शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मतलब है कि हम जब कुछ चीज निर्यात करते हैं तो कुछ हम आयात भी करते हैं, तो हम इनफेक्ट कितने बैलेंस में, हमारा निर्यात कितना बढ़ रहा है। चलिए सरल भाषा में समझ लीजिए, अगर निर्यात हमारा ज्यादा हो रहा है तो बट नेचुरली हम ज्यादा वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं। तो जब वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो देखिए फिर से वही है कि एक्टिविटीज बढ़ रही है। तो दोस्तों ये चार सेक्टर होते हैं जिससे मांग जनरेट होती है। तो अब आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जान चुके होंगे मित्रों, अब वक्त नहीं है कि मैं इसे और अधिक एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी मैंने आपको मूलभूत बातें बता दी हैं, खासकर डिमांड को लेकर के। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा विचार करें और लोगों से डिस्कस भी करें और किताबों में पढ़ें, आपको ये तथ्य समझ में आ जाएगा, लेकिन इसे समझना जरूरी है। दोस्तों जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सब आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले अपने सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं पवन राजपूत, संदेश नाहर इंदौर मध्य प्रदेश से, राहुल जाजोरिया नांगलोई दिल्ली से, मनीष कुमार पटना बिहार से, प्रियंका यादव, शिवानी श्रीवास्तव, शिवदयाल कुमार कैमूर बिहार से, ओंकार कुलकर्णी, पवन कुमार ब्रह्मपुर बिहार से, और रुचिका मेघा, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।